जितने तुम अपने यार से अपने अंतर्यामी से वफादार होते हो उतने ही तुम्हारे परिचित तुम्हारे से वफादार होंगे। जाने अनजाने जितने तुम भीतर वाले पर भरोसा रखते हो उतना ही तुम्हारे परिचित तुम्हारा काम कर देंगे। अगर तुम्हारा अपने आत्मा में भरोसा नहीं तो तुम्हारे परिचित वाले 365 दिन छाती ठोकते हुए तुम्हें आश्वासन दे रहे और रोज फेंटा पिए जा रहे हैं तो ये सारा का सारा खिलवाड़ है। तुम जाने अनजाने अपने पुण्य बढ़ाते हो तो बाहर भीतर में सुविधा मिलती है, पुण्य घट जाते हैं तो बाहर भीतर हो जाता है और ये घटता बढ़ता चलता रहता है। तो यहां हरि योगेश्वर कहते हैं कि ये उत्तम भक्त का लक्षण नहीं कि घटते बढ़ते संसार के सुखों में अथवा परिस्थितियों में सत्य बुद्धि करके रहे, लेकिन उत्तम तो वह है कि घटता बढ़ता प्रकृति में है, माया में है, संसार में है। संसर्ति इति संसार, जो सरकता है उसमें घटता बढ़ता है, जो सरकने वाला है वो सरक गया तो चिंता किस बात की। वो भी दिन थे कि फर्स्ट क्लास गद्दा बिछाते थे, चारों तरफ तकिया रखते थे, और आज ये भी दिन है कि टाट पे बैठे हैं। देख लो एक स्टेज बना है टाट पे बैठे। आए राम दुख की बात है। नहीं, ये अपने तरफ से स्वीकृति दी है, ये सब गादी तके इतना सब नहीं लगाओ, जरा टाट बिछा दो सादा सुधा स्टेज पर। अपने आप स्वीकार कर लिया तो दुख नहीं है, आनंद है, और जबरन कोई थोपता है तो दुख हो जा रहा है। इसलिए हर परिस्थिति को अपने आप स्वीकार कर लो तो आनंद हो जाएगा, नहीं तो दुख बनाना है तो है मसाला दुख बनाने का। इतने दिन के बाद आए और समिति वाला ने एक टाट का टुकड़ा बिछा के स्टेज बना दिया, बस हाय रे हाय। देखो है कि नहीं है। अरे भाई टाट आया तो टाट, बाट आया तो बाट, खाट आया तो खाट, आखिर ये मुसाफिर खाना है। जिसको अपने आप में आराम मिल गया, जो अपने आप में आ गया है, उस आत्मवेता को, उस संत को उत्तम भक्त कहा जाता है। भक्त का अर्थ क्या? जो परम चैतन्य से विभक्त न हो। मंजीरा ठोकने वाले को भक्त नहीं बोलते, खड़ताल बजाने वाले को भक्त नहीं कहा यहां। यहां भक्त की परिभाषा है जो परमात्मा तत्व से विभक्त न हो, अलग न हो। तो क्या भगवान की मूर्ति को चिपका रहे अथवा सारा दिन राम 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 करे, उसको भक्त कहा? नहीं। ज्ञानी भक्त, ज्ञानी भक्त माने क्या? देखो पंखा चल रहा है, लाइट का गोला दिख रहा है, कहीं ट्यूबलाइट दिखी, कहीं फ्रिज दिखा, कहीं एम्पलीफायर दिखा, ये साधन तो अलग अलग दिखे, लेकिन इतने अलग अलग देखने पर भी तुम्हें ज्ञान है कि सब लाइट का चमत्कार है, सब इलेक्ट्रिक नेगेटिव पॉजिटिव दो लाइनों का ही चमत्कार है, इलेक्ट्रिसिटी का ही चमत्कार है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट दिखने भर को हैं, बाकी सत्ता तो वही है लाइट की। ऐसे ही अनेक रूप, अनेक रंग, अनेक भाव अभाव स्वभाव दिखे, फिर भी उसका उद्गम स्थान पर जिसकी निगाह, जिसको ज्ञान हो गया है, वो भगवान का उत्तम भक्त है। तो ऐसा उत्तम भक्त एक रहता था ईरान में, उसका नाम था फरीदुद्दीन अत्तार। तुर्क और ईरान की लड़ाई, और जहां ब्रह्मवेता रहते हैं उस देश के पुण्य भी तो बढ़ते हैं, जहां पवित्र आत्मा रहते हैं अधिक उस देश के उस राज्य के कुछ पुण्य भी होते हैं ज्यादा। तो महाराज तुर्की लोग हारते जाते थे और ईरानी लोगों की जीत होती जाती थी, अब युद्ध में उन्होंने फरुरुद्दीन अत्तार को, संत को जासूसी शक में पकड़ लिया, उसको जासूसी का आरोप लगा दिया। जाना माना व्यक्ति था, लोकप्रिय था, संत था, सूफी फकीर था। संत का मतलब है जिसके राग द्वेष का अंत हो गया, अपने पराये का अंत हो गया है, जन्म मरण का अंत हो गया है, अज्ञान का अंत हो गया। संत शब्द बहुत भारी है। वो ऐसा संत था, सूफी संत था, उसको पकड़ दिया। तुर्क के शासन ने उन पर जासूसी का आरोप लगाकर, हालांकि उनके लिए कोई जासूसी बासूसी कोई संभव नहीं है, वो राजकारण से परे होते हैं। अपने सनातन धर्म में उनको ब्रह्मवेता कहा जाता है, तत्ववेता कहा जाता है, आत्मज्ञानी कहा जाता है, और मुसलमान धर्म में उनको सूफी कहा जाता है, सूफी फकीर। आपने वेदांति कही, ये लोग सूफी, वेदांत से ही वो सूफी बात चला है। उस सूफी फकीर को पकड़ा गया और हुक्म कर दिया फांसी का। जब ईरान में पता चला कि फकीर अपने संत को उन्होंने फांसी के हुक्म फरमा दिया है, तो वहां का ईरान का धनाढ्य व्यक्ति ने तुर्कियों को भेजा संदेशा कि इनके तोल के बराबर के जवाहरात ले लो मुझसे, लेकिन इस सूफी फकीर को तुम मत सताओ। अंध शासन ने नहीं माना। वहां के युवानों ने देखा कि अपने देश का प्यारा संत था, सूफी फकीर था, को कोई राग द्वेष नहीं, सब में खुदा ताला को देखने सुनने कहने वाला था। युवानों ने संदेशा भेजा कि किसी युवान के प्राण उनके बदले हमें दें। लेकिन फरुरुद्दीन अत्तार को फांसी न लगनी चाहिए, लेकिन तुर्कियों ने नहीं माना। आखिर ईरान के सम्राट ने कहा कि तुम्हें चाहिए तो ईरान का तख्त पर आके बैठो, ईरान का मैं तख्त दे सकता हूं, लेकिन इस फकीर को फांसी न लगा। तुर्कियों ने सुना कि एक व्यक्ति के लिए पूरा राज्य देने को, अभी इतना जीत रहे हैं और इतना खूना खराबी होकर, तो इनको राज्य, इतना मूल्यवान राज्य और एक व्यक्ति के लिए दे रहे। चकित हो गया, आ गया उनके पास, फांसी का हुक्म तो कैंसिल कर दिया, प्रभावित हो गया। तुर्की शहंशाह आया कि तुम आखिर एक फकीर के बदले में पूरा राज्य देने को तत्पर हो गए, ये क्या बात। बोले, राज्य तो पहले भी नहीं था और बाद में भी मेरा नहीं रहेगा, छोड़ के जाऊंगा। अगर इस निर्दोष ब्रह्मवेता फकीर को फांसी लग जाती है तो मेरा देश कलंकित हो जाएगा और मेरा देश खुदा की नजरों से गिर जाएगा। फकीर को दुख मिला मेरे देश में, ब्रह्मवेता फकीर को, जो भगवान को, खुदा को प्यारा है, उसको मेरे देश में दुख मिले तो खुदा की नजरों में मेरा देश गिर जाएगा। तो हरि योगेश्वर कहते हैं कि ऐसा प्यारा होता है वो भगवान का। भगवान का जो प्यारा होता है वो सात्विक भक्तों का जरूर प्यारा होता है। जो भगवान का प्यारा होता है, भक्तों का प्यारा होता है, तो महाराज अभक्त भी उसके आगे आए तो अभक्त भी भक्त बन जाते, उनका भी प्यारा होने लगता है। तो तुम कभी भी अपने चित्त में जब उद्वेग आए, राग आए, द्वेष आए, तो अपने आप में प्रश्न पूछो। दुनिया के सब गुरुओं को, सब नेताओं को मान लो, लेकिन तुम अपने आप के जब तक गुरु नहीं बनते हो तब तक गाड़ी तेजी से नहीं चलती। भैया, तुम मेरे को गुरु मानकर दक्षिणा धरो, क्षमा करो बाबा, ये तकलीफ मुझे न दो और आप भी न लो। मेरे को गुरु मानकर भेंट रखो, पूजा रखो, आरती करो, मैं ये नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूं कि आप अपने गुरु बन जाओ। जयराम जी की, बुद्ध कहा करते थे अप्त दीपो भव, अपना दिया आप बनो। कैसे अपना दिया आप बनो, जब किसी की निंदा, किसी की प्रशंसा, किसी को दुख देना अथवा किसी तुच्छ सुख की लालच करना मन में होने लग जाए, तब अपने आप के गुरु बनो। अपने आप से पूछो कि मेरा अवतार, मेरा जन्म निंदा सुनने के लिए हुआ है क्या? मेरा जन्म चापलूसी करने के लिए हुआ है क्या? मेरा जन्म तुच्छ विषयों की चिता में जलने के लिए हुआ है क्या? मेरा जन्म लोगों को लड़ाने के लिए हुआ है क्या? मेरा जन्म राजकारणियों की नहीं अपना उल्लू सीधा करने के लिए हुआ है क्या? नहीं, मेरा जन्म तो मेरे प्रियतम से मिलने के लिए हुआ है। मेरा जन्म तो मेरे मालिक का साक्षात्कार करने के लिए हुआ है। ऐसा अपना ज्ञान अगर तुम पुष्ट करते जाओगे तो चित्त के दोष, पीछे गिरना, आगे गिरना या जहां खड़े हो वहां फिसलना, इससे तुम बचते जाओगे। और जितने तुम बचते जाओगे उतने तुम अपने दिए आप होते जाओगे। प्रसिद्ध सूफी फकीर रबिया, उसने एक बार रोजा रखा, उपवास रखा 8 दिन का। उपवास के बाद रोजा खोलना होता है। रोजा खोलने के समय, उसने संध्या के समय चिराग जलाया, दिया जलाया, किसी ने रस का प्याला रखा था और बिल्ली वहां से दिया जला तो बिल्ली भड़की कहीं और रस का प्याला ढूल गया। लेकिन चित्त में शोभ होने के पहले चित्त में समझ हुई, कोई हरकत नहीं, पानी पीकर रोजा खोल दूंगी, खुदा खैर करे तो बंदा लहर करे। रस खराब हो गया, लेकिन रस जहां से सब रसों को रस मिलता है, ऐसे रस स्वरूप परमात्मा जहां प्रकट होंगे, उस दिल को खराब क्यों करो? पानी से रोजा खोल लूंगी। परिस्थितियां दुखदाई हो सकती है, लेकिन दुखी होना न होना तुम्हारे हाथ की बात है। परिस्थितियों में विघ्न हो सकते हैं, लेकिन विघ्नों में अपने को फेंकना अथवा विघ्नों का दृष्टा रहना, यह आपके हाथ की बात है। समुद्र किनारे कुछ छोटी तरंगे, कुछ बड़ी तरंगे, लहरें लहराती है, लहरें लहराती है, उस समय लहरों को देखकर तुम आनंद, हर्ष, उल्लास का अनुभव कर सकते हो। और तब तक आनंद और हर्ष का, उल्लास का अनुभव कर सकते हो जब तक लहरों से पृथक रहते हो। जब अपने को लहरों में फेंक देते हो तो घसीटे जाते हो खारे सागर में। ऐसे ही सुख दुख की परिस्थितियों में जब दृष्टा सृष्टा का भाव छोड़कर, साक्षी का भाव छोड़कर, अपने स्वरूप का अनुसंधान छोड़कर जीव जब उसमें अपने को फेंकता है, तब घसीटा जाता है। फिर सोचता है कि यहाँ अनुकूलता नहीं, चलो काशी, काशी अनुकूलता नहीं, चलो काबा, काबा में ठीक नहीं, चलो अमेरिका, चलो तुर्क में, चलो कहीं इधर चलो। भैया तू जहाँ है वहां अगर तू वैंकुंठ बनाना नहीं जानता तो वैंकुंठ में भी परेशानी हो सकती है। तू जहां है वहां तू खोज। महाराज मैं तो नड़ियाद में हूं, नड़ियाद में तू नहीं, अहमदाबाद में तू नहीं, तू तो वहां है जहां से सारे दुनिया को प्रकाश मिलता है। यार तू वहां है, वहां जरा देख। नड़ियाद में तेरा शरीर है, अहमदाबाद में तेरा शरीर है, ये तेरा साधन इधर उधर है, लेकिन ये सारे शरीर पृथ्वी पर है। आकाश मंडल और पृथ्वी को छोड़कर तेरे शरीर तो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन तेरा आत्मदेव तो आकाश के पार भी है और तेरे दिल की हर धड़कन में तू साथ में है, वो तू है। इस शरीर को छोड़ने के बाद आकाश मंडल लांघने पर भी तू रहता है। शरीर तेरा आकाश मंडल नहीं लांघेगा, लेकिन तू पृथ्वी को भी लांघ जाता है और आकाश मंडल को भी लांघ जाता है। तू ऐसा असीम है, तू भक्त हो जा। भक्त का मतलब टिल्ला टिपका करने की निशानी भक्त की थोड़ी ठीक है भाई है, लेकिन भक्त का मतलब है कि अपने स्वरूप से, अपने खजाने से, अपने शुद्ध मय से विभक्त ना हो, इसी का नाम भक्त है, परम भक्त है। और ये कठिन नहीं है। तुम गैर को रख नहीं सकते, अपने को छोड़ नहीं सकते हो लाला। तुम गैर को रख नहीं सकते, एक तिजोरी की चाबी को रखकर तुम आराम से नहीं सो सकते, जी सकते। जब वो तिजोरी की चाबी को भूलते हो तब नींद करते हो। किसी वस्तु को पकड़कर तुम आराम से नहीं जी सकते, लेकिन उसका उपयोग करके भीतर से छोड़े रखो। बाहर से पकड़े हुए देखो, लेकिन भीतर से छोड़े रखो। भीतर से जब छोड़े रखोगे तो अपने मैं का तुम्हारा फूल खिलेगा
और उसकी सुवास तुम्हें तो आएगी लेकिन तुम्हारे इर्द गिर्द आने वालों को भी आने लगेगी। रबिया ने सोचा कि कोई हरकत नहीं, रस का प्याला ढुल गया, लेकिन रसों को जहां से रस मिलता है वो तो मालिक मेरे साथ है, पानी पीकर रोजा खोल लूंगी। इतने में चिराग बुझ गया, दिया बुझ गया, दिया बुझ गया। महाराज बिल्ली ने कहीं जंप मारा और दिया हाथ से गिर गया, दिया टूट गया। अभिया ने कहा कि मेरे मालिक ये सब क्या, क्या मैं सूखा पानी पीकर रोजा खोलने के काबिल नहीं बनी? क्या ऐसे मेरे कर्म हैं? रस तो ढुल गया लेकिन पानी का प्याला भी नहीं, पानी की सुविधा नहीं, एक चिराग था वो भी तूने तोड़ दिया। गैबी आवाज आया कि रबिया, अगर तू दुनिया की शौकत का मजा लेना चाहती है तो मुझे तेरे दिल से तड़फन उठा लेने दे, अगर तू दुनिया की सहूलतों का मजा लेना चाहती है तो मुझे तेरे जिगर में से, तेरे दिल में से जो तड़प और पुकार है वो उठा लेने दे। विलासिता और दिव्यता साथ नहीं रहती? रबिया कहती, नहीं नहीं मेरे प्रभु, मेरी गलती हो गई, मैं तेरी रजा में राजी हूं। नहीं नहीं मुझे तो रात भर तेरे लिए आहें भरने दे, दिन को तेरी ही निगाह डालते हुए काम करने दे, बस मुझे सहूलतें नहीं चाहिए, मुझे तो तू चाहिए। सहूलतें तो इस शरीर को मिलेगी, जिस शरीर को सहूलतें मिलेगी उसको तो जला दूंगी, लेकिन तू मुझे तो मिलेगा और मैं तेरी, तू मेरा। ये मध्यम भक्त है, जब उत्तम भक्त होता है तो मैं और तू का भेद मिट जाता है, अपने स्वरूप में जग जाता है। एक उपनिषद में कथा आती है, दिवोदास का पुत्र प्रतरदंत अपने शौर्य से, सदाचार से, परदुख कातरता से राज्य चलाता था। महाराज सब दिन एक जैसे किसी के नहीं रहे, राजा के भी नहीं रहे तो प्रजा के भी नहीं रहते, तीन चीजें सदा बदलती रहती है। शरीर बदलता रहता है, किशोर अवस्था छोड़नी नहीं पड़ी छूट गई, बाल्यावस्था छोड़नी नहीं पड़ी छूट गई, जवानी छोड़नी नहीं पड़ी छूट गई, बदल जाता है। ये तुम्हारे चमकीले चहलाते काले बाल तुम सदा नहीं रख सकते, चमकते हुए तुम्हारी ये बत्ती सी तुम सदा नहीं रख सकते लाला, और चिकना चपाट तुम्हारा चेहरा भी सदा एक जैसा नहीं रहता, झुर्रियां पड़ जाती, शरीर सदा एक जैसा नहीं रहता, मन सदा एक जैसा नहीं रहता, चाहे भक्त का मन हो, चाहे जोगी का मन हो, चाहे संसारी का मन हो, चाहे क्रूर का मन हो, चाहे दयालु का मन हो, एक जैसा नहीं रहता। हम दुखी उसलिए होते कि एक जैसा बनाए रखे, एक जैसा तन भी नहीं रहेगा, मन भी नहीं रहेगा और संसार के साधन भी एक जैसे नहीं रहेंगे। ये बात आप कृपा करके स्वीकार कर लो, मेरे पर ही कृपा कर लो, इस बात को आप स्वीकार कर लो, बिल्कुल सच्ची बात है, संशय है तो पूछो। शरीर एक जैसा रहता है क्या? नहीं रहता है। शरीर एक जैसा नहीं रहता उसमें संदेह है क्या? मन एक जैसा नहीं रहता उसमें संदेह है क्या? जगत एक जैसा नहीं रहता इसमें संदेह है क्या? निसंशय बात है, तन मन और जागत एक जैसा नहीं रहता, लेकिन तन को मन को जगत को बदलते हुए जो देखता है वो बदलता है क्या? जो बदलाहट को देखता है वो नहीं बदलता, तभी तो बदलाहट को देखता है। जो नहीं बदलता है वो तुम हो और जो बदलता है वो माया है। जो माया है उसको माया जान लो और जो मैं है उसको मैं जान लो। जो मैं को जानता है मेरी शरण आ जाता है, उसके सारे पाप कट जाते हैं, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। बाइबल में आया कि जो मेरी शरण आएगा उसके सब दुख दूर हो जाएंगे। ये बाइबल में वचन कहां से आया? गीता से, जयराम जी की, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम रज, ये गीता का वचन आया बाइबल। सब धर्मों को छोड़ दे मेरी शरण आ जा। बोले धर्मों को छोड़ दे, भगवान कहते हैं सब धर्मों को छोड़ दे, धर्म माना पुण्य, मेरी शरण आ जा। जो भैया भगवान को पुण्य अर्पण कर दे तो अच्छा अच्छा ले लें हम या भगवान ले लेते, तो फिर बुरा बुरा तुम्हारे पास रहे तो मीठा मीठा गप, मीठा मीठा स्वाह और कटु कटु तेरा, ऐसा तो नहीं होता। भगवान को जब सत्कर्म दे देते हो तो फिर तुम्हारे से अगर गलती भी हो गई तो वो भी तो भगवान की हो गई। इसलिए कहा सत्कृत्य भगवान छोड़ने को नहीं कहते हैं, लेकिन जो धर्मात्मा है, जो सज्जन है, जो पुण्यात्मा है, वो तो पुण्य का कर्ता होगा। जो पुण्य का कर्ता होगा उससे कभी पाप भी होगा, क्योंकि मन एक जैसा नहीं रहेगा। जो सुख का भोगता होगा, तंदुरुस्ती का भोगता होगा, वो कभी बीमारी का भी भोगता होगा। जो जीवन का भोगता है वो कभी मृत्यु के जाल में भी फिसेगा। इसीलिए ये सारे के सारे तू मुझे अर्पण कर दे, क्योंकि ये मेरे माया के हैं, तू मेरा है, मैं तेरा। जय जय। तो उपनिषद की कथा है, प्रतरदंत ने अपना ईमानदारी से अच्छाई से राज किया और महाराज वो परिस्थितियां तो बदलती है, राज्य भी बदल जाता है और जवानी भी बुढ़ापे में हो जाती है, अथवा कभी राजा मर भी जाता है, ऐसा होता ही रहता। सब पहुंच गए इंद्रपुरी में, वीर गति को प्राप्त हो गए। इंद्र ने उसका स्वागत किया, हे प्रतरदंत, तेरी उदारता से। प्रतरदंत ने इंद्र को कहा कि हे इंद्रदेव, आप अगर मुझे देना चाहते हैं कुछ तो कृपा करके मेरी बुद्धि से मत दीजिए, मेरी मति से जो मैं मांगूंगा, अपनी बुद्धि से, अपने मन से जो अच्छा लगा वो तो हम मांगते आए, करते आए, भोगते आए, फिर भी जन्म मरण का ये सिलसिला चालू रहा। जयराम जी बोलना पड़ेगा। आपको जो अच्छा लगा, उचित लगा, वो तो हजूर आप कर ही रहे हैं, करते आए हैं। हर जन्म में आपके मन को जो अच्छा लगा, आपके बुद्धि को जो अच्छा लगा, वो आप करते आए। तो क्या सब दुख आपके मिट गए? नहीं मिटे। बोले मटी गया, भले थोड़ी देर के लिए जरा बुद्धू हलवाई जैसा कह दो आप, लेकिन गहराई से देखोगे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना बाकी है, कहीं ना कहीं की फाइल बाकी है, और आखिरी तो जन्म मरण की फाइल उधर ही पड़ी पड़ी। सब दुख नहीं मिटे जब तक नहीं जाना उस अंतर्यामी परमात्मा को। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पाशेभ्यो, उस देव को जानने से सारे पाश से छूटेगा। नहीं तो कभी कर्तव्य की पाश होगी, कभी भोक्तव्य की पाश होगी, कभी स्वर्ग की पाश होगी, पाश माने जाल बंधन, तो कभी नरक की पाश होगी, तो कभी मृत्यु लोक की पाश, ये पाश चालू रहेगी। यहां से मर के गए तो स्वर्ग में घसीटे जाएंगे, या तो नरक में घसीटे जाएंगे, या तो चार पैर वालों के गर्भ में घसीटे जाएंगे। सब दुख कैसे मिटे? काल चक्र जिसके सिर पर मंडार रहा है और वो बोलता है हेलो हाउ आर यू, क्या हैप्पी, You say sometimes few minutes, but not truth. ये सच्चाई नहीं है। पूरे दुख तेरे मिट गए ये बात नहीं है। पूरा तू सुखी है, हैप्पी है, ये बात नहीं है। ये थोपा हुआ हैप्पीनेस है, असली हैप्पीनेस नहीं है। अगर असली हैप्पीनेस है तो दो गाली सुनने के बाद क्यों आंखें लाल हो जाती, अथवा मृत्यु आता है तो क्यों हो जाता है? सच्चा सुख मिला ही नहीं, मन का माना हुआ सुख मिला। मन बदलने से सुख बदल जाएगा। जयराम जी बोलना पड़ेगा। नारायण 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 नारायण। प्रतरदंत ने कहा मुझे अच्छा लगा वो तो मांगता आया, भोगता आया, लेकिन इससे कुछ काम बना नहीं। अब आपकी दृष्टि से जो उत्तम तम हो वो मुझे दीजिए। इंद्र ने देखा कि प्रतरदंत की भाषा बड़ी गहरी है। उत्तम तम, उत्तम तो है स्वर्ग का सुख, लेकिन ये उत्तम तम मांग रहा है। मनुष्य जन्म में तो अल्प आयुष होती है, राग द्वेष होता है, बीमारियां घेर लेती है, उसकी अपेक्षा स्वर्ग का सुख उत्तम है। और स्वर्ग के सुख की अपेक्षा मेरा पदवी उत्तम तर है, लेकिन ये तो मांग रहा है उत्तम तम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम,
मेरी प्रजा के लिए सब लोगों के लिए जो उत्तम तम हो वो दीजिए। इंद्र ने कहा उत्तम तम स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग का राज्य उत्तम तम नहीं है। इंद्र भी कई हो गए हैं, एक ही इंद्र की बात नहीं है, अब कई ज्ञानी इंद्र भी हुए, त्वष्टा प्रजापति विश्वरूपा को गुरु बनाया था जिस इंद्र ने, उसकी कथा है। महाराज उत्तम तम, बोले उत्तम तम है मैं को जानना, उस मैं को जिसने जान लिया वो उत्तम तम उसको मिल गया। उस मैं को जानने के बाद ब्राह्मण की क्षत्रिय की और किसी की हिंसा हत्या भी हो जाती, अज्ञानी संन्यासियों की हत्या हो जाती या अज्ञानी संसारियों की हत्या हो जाती, फिर भी जिसे कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव छू नहीं सकता है वो उत्तम तम है। और दुनिया भर का हित करने के बाद भी हित का कर्तृत्व भाव जिसको छू नहीं सकता है वो उत्तम तम है। उत्तम तम का मतलब है कि ऐसा कोई पुण्य नहीं जो तुम्हें उससे ऊपर ले जाए, और ऐसा कोई पाप नहीं जो तुमको उस जगह से नीचे गिरा सके। वो ऐसी जगह है कि वहां पुण्य की भी पहुंच नहीं, पाप की भी पहुंच नहीं, सुख की भी पहुंच नहीं, दुख की भी पहुंच नहीं, जीवन की भी पहुंच नहीं, मृत्यु की भी पहुंच नहीं, अपने की भी पहुंच नहीं, पराये की भी पहुंच नहीं, बीमारी की भी पहुंच नहीं, तंदुरुस्ती की भी पहुंच नहीं, प्रलय की भी पहुंच नहीं, और सृष्टि की भी पहुंच नहीं। ऐसा जो तत्व है वो तत्व उत्तम तम है, और उत्तम तम तत्व को जानना ही उत्तम तम पद है, उसके सिवाय सब इधर उधर की बातें हैं। संसारी मनुष्य स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के मेल को जन्म मानता है, और स्थूल शरीर यहां पड़ा रह जाए, सूक्ष्म शरीर स्वर्ग में आ जाए अथवा नरक में चला जाए उसे मृत्यु मानता है। भक्त भक्ति के भाव को जीवन मानता है, और भक्ति के भाव से गिरा तो उसको मृत्यु मानता है। और महाराज मान वाला व्यक्ति, सत्ताधीश व्यक्ति पद और कुर्सी को ही जीवन मानता है, कुर्सी से गिरा गया कि मरी गया ऐसा मानता है। ये माना हुआ उत्तम और अधम है, वास्तविक में उत्तम तो यह है कि जहां मन की वृत्ति बुद्धि के निर्णय और अहम का स्फुरण ये सब माया मात्र लगता है, और माया से अतीत जो पद है वो उत्तम तम है। उसलिए हे युवक तू उस उत्तम पद को पा ले, और वो उत्तम पद मैं को जानने से मिलता है। तू मेरे को पा ले, मेरे को पा ले उसका मतलब ये नहीं कि इंद्र का साकार रूप अथवा इंद्र का तख्त अथवा इंद्र का वैभव नहीं। इंद्र कह रहे हैं तू मेरे को पा ले, मेरे को जान ले। अभी इंद्र जो बोल रहे हैं मेरे को पाले मेरे को जान ले, उसका लक्ष्य है जैसा कृष्ण अपने स्वरूप में बोलते हैं कि सब कुछ छोड़कर तू मेरी शरण आ जा, मेरी शरण आ जा। तो अगर साकार श्री विग्रह की नजर से देखें तो अर्जुन तो कृष्ण जी के शरण था और उनके साथ ही तो था, रथ की बागडोर तब पकड़ी अर्जुन गया था कि अब मेरे को मदद करो मैं आपके शरण आपका हूं। लेकिन श्री कृष्ण का जो माम है वो माम रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण की आकृति के तरफ का माम नहीं है, लेकिन अनंत अनंत ब्रह्मांड पैदा हो होकर लीन हो जाते हैं फिर भी जिस तत्व में फर्क नहीं पड़ता वो तत्व परब्रह्म परमात्मा तत्व श्री कृष्ण का माम है। जो कृष्ण का माम है वही जीव का माम है, वही शिव का माम है। लेकिन जीव में और शिव में फर्क ये है, ईश्वर में अज्ञानी में और ज्ञानी में फर्क ये है, मुक्त में और बंधन में फर्क ये है कि बंधन वाला व्यक्ति शरीर को संसार को और मन को मेल गोल करके मैं मानता है, और मुक्त व्यक्ति शरीर संसार और मन के अधिष्ठान स्वरूप चैतन्य परमात्मा को मैं मानता है। तो जो चैतन्य तत्व को मैं जानते हैं वो ईश्वर कोटि के हैं, और जो बदलने वाले हाड मास के पिंजर को मैं मानते हैं वो जीव कोटि के हैं, और जीव कोटि के और पिंजर में रहकर जीने की इच्छा करते इसलिए उनका नाम जीव पड़ गया। तो जो अच्छा करता है अच्छा तो करो, लेकिन कर्तापन मिटाते जाओ, बुरा मत करो। लेकिन अच्छा होता है तो कुछ अंश में बुरा भी हो जाता है, सुख आता है तो कुछ अंश में दुख भी आ जाता है, ये मिश्रित है। तो मिश्रित चीज उत्तम तम नहीं होती है, लेकिन मिश्रित चीज से परे जो चैतन्य परमात्मा है वो उत्तम तत्व है, उत्तम तम है। उत्तम तत्व का ज्ञान पाना और उत्तम तम में आ जाना ही सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार का उपदेश इंद्र ने दिया उस युवक को। प्रतर